आगे है जी सूरत शोरा। शोरा शायर की जमा। नबी सल्लम पे एक इल्ज़ाम लगा था कि आप शायर हैं, तो अल्लाह ने इस आयत में शायरी और उसकी हकीकत को खोल दिया। 277 आयात हैं इसकी। आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सी सूरा है लेकिन इसमें आपको अपने अमल के काफ़ी बारीक नुक्ते मिलेंगे। पहली चार आयात 1-4 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई। तौसीन मीम हरूफ मुकत्तात है। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ये आयतें हैं कि बयान करने वाली किताब की। लअल्लक बाख़िउ नफ्सका ला यकूनु मुमिनीन। शायद कि आप तपते नफ्स को हलाक करने वाले हैं इस गम में कि ईमान वाले क्यों नहीं होते। अल्लाह कहते हैं, इन्नशा नुनज़्ज़िल अलैहि मिनस समाई आया। अगर हम चाहें तो हम इनके ऊपर आसमान से निशानी उतार दें। फ़ज़ल्लत आनाकुहुम, फिर इनकी गर्दनें झुक जाएँ। लहा खादेईन, झुकते हुए, यानी वही नबी सल्लम पे जो बातें कसते थे और आपके दिल में उतनी ही तड़प थी। आप देखिए कि जो बखा है ना, इसके बगैर दीन का काम नहीं होता। सवाब लेना है ना, 500 दाने की तस्बीह लेकर सुभान अल्लाह पढ़ते रहिए, जन्नत में दरख्त लगते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कहते जाएं, मोहरें सब्त होती जाएंगी। ये जो दूसरों की हिदायत की तड़प जिसमें इंसान फिर घुलाता है, इसके बगैर काम नहीं होता। ये जो पीछे हमने आयतें पढ़ी ना, बीवी बच्चे शौहर, इसमें भी असल में खैर ख्वाही होती है। आप जितना जिससे खैर ख्वाह होते हैं उतना आप उसके लिए कुड़ते हैं। फिर आगे आयत नंबर 5 से 9 में मुशरिकीन पर अजाब आने वाला है, इनको इसकी खबर दे दो। वमा याती है मिन जिक्र, जब भी इनके पास कोई नसीहत आती है रहमान की तरफ से, नहीं ये तो उससे मुंह ही फेरते हैं। यानी जैसे बच्चों की आदत होती है ना कि माँ बाप की बात पे कान नहीं धरना, इसी तरह कुछ बातें कौमों की भी होती हैं। अल्लाह ताला आगे दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास जाने का हुक्म देते हैं। आयत 10 से 22 में, व इस नादा रब्बु का मूसा, और जब पुकारा आपके रब ने मूसा को कि जाइए जालिम कौम की तरफ। ये वही मदियन से मिस्र आते हुए रास्ते में कोहे तूर के पास जो मामला हुआ, उसी की रेपिटिशन है इधर। ये यहाँ क्यों आ गया? नबी सल्लम को तसल्ली दी जा रही है, आपको सताया जा रहा है, तो देखिए मेरे मूसा को भी इतना सताया गया। वो कहते हैं ना कि दूसरों का गम सुना तो अपना गम भूल गया। ये किस्से और ख़ास तौर पर इस सूरत में अब जो नबी सल्लम को दूसरी कौमों के हाल बताए जा रहे हैं अम्बिया के, तो ये बताया जा रहा है कि अगर कुरैश आपको तंग कर रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे, तो क्या हुआ? देखो फिरौन ने भी तो मूसा को कितने ताने दिए थे। देखो देखो, तू तो मेरे घर में बच्चा बन के रहा, देख मैंने तेरी कितनी अच्छी तरबियत की, क्या किया, फिर तू भाग गया। तो ये मक्का वाले भी ऐसी ही कुछ बातें कर रहे थे। और फिरौन का एक बहुत बड़ा जुर्म, कहना रब्बुकुमुल आला, मैं बहुत ही रब्बे आला हूँ और मैं ही खुदा हूँ। तो अल्लाह ताला आगे कहते हैं, आओ बता दो इनको हकीकी रब कौन है। आयत 23 से 33 में हकीकी रब की पहचान। काल फिरौन व मा रब्बुल आलमीन, फिरौन अपने तकब्बुर और अपनी बड़ाई में कहता है, कौन है भी रब्बुल आलमीन? ये ऐसे ही जैसे भाई मेरे सिवा भी कोई है। तो आगे आप देखिए हज़रत मूसा ने कितने खूबसूरत दलाइल दे दिए। कहते हो कि रब तो आसमानों और ज़मीन और उसके बीच की चीज़ों का है, अगर तुम ईमान ले आते हो। फिरौन को बड़ा गुस्सा आया, यानी ये मुकालमा है असल में, और फिरौन की अना पे चोट पड़ रही है। मूसा की ज़ुबान से जब उसने अपने सिवा किसी और का नाम सुना है ज़रा रब, तो अपने दरबारियों को क्या कह रहा है? काल अली मन हौलहू, उनको कहने लगा जो उसके इर्द गिर्द थे, अला तस्तमीउन, ये तुम सुन रहे हो ये मूसा क्या कह रहा है? यानी प्रवोक कर रहा है। आज भी देखिए ऐसी बातों को बड़ी जल्दी मीडिया पे उछाल दिया जाता है जिसमें उनके खिलाफ कोई बात हो रही होती है। तो अल्लाह ताला ने इस सारी बात में से नबी सल्लम को भी तसल्ली दी और आज मुझे आपको भी बता दिया कि वक्त का फिरौन ही सामने क्यों ना आए। अल्लाह की तौहीद उसके सामने रख दो, सच के आगे कोई बोल नहीं सकता। फिर आगे आए 34 से 42 में, दुनियादारों और अल्लाह वालों का फ़र्क है। फिरौन के जादूगर जब दुनियादार थे तो क्या कह रहे थे कि हमें कुछ इनाम मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें कोई तोहफा मिलेगा, कोई ओहदा देंगे, कोई हमारे लिए कोई और सेंक्शन मौजूद है। लेकिन जब दीन आ गया दिल में तो फिर सजदों में चले गए। हैं क्या कहने लगे? वक़ालू लि फिरौना आइन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नाहनुल गालिबीन। फिरौन ने कहा, नाम काला नाम, व इन्नकुम इज़ल मिनल मुक़र्रबीन, हाँ तुम्हें मैं अपने बड़े करीबी लोग बना लूँगा। और आगे क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से मुकाबला होता है। आयत 43 से 60 में, और दिल की दुनिया ही बदल गई। वही जादूगर जो भी इतने लालच में डूबे हुए देख रहे थे। देखिए, कुफर, जादू और लालच, तीन चीज़ें वर्स्ट थी जो उनमें थी, लेकिन इधर दिल की दुनिया क्या बदली। फ़ौलकियस हरतु साजिदीन, बस गिरा दिए गए जादूगर सजदों में। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कहने लगे हम तो ईमान ले आए रब्बिल आलमीन पे। वो कौन है? रब्बी मूसा व हारून। ये जुमला क्यों बोलना पड़ा? कि कहीं फिरौन को गलती ना लग जाए कि ये मुझे रब कह रहे हैं। अब फिरौन को जरा सूझ गई। काला आमन तुम लहू कबल अन आज़न लकुम, भाई ये तुम इस पर ईमान ले आए इससे पहले कि मेरे से इजाज़त लेते। यानी गोया के फिरौनों का दिल चाहता है कि लोग ईमान भी उनसे पूछ कर लाए, अल्लाह के ताल्लुक और उनके बीच में वो आ जाते हैं। पर आज तो इसकी वर्स्ट पिक्चर्स आपको दिख रही हैं। याद रखिएगा, अभी तो शुरुआत है ना फितनों की। एक वक्त आएगा कि लोगों ने दोबारा लोगों को ला इलाहा इल्ला कहने पे जेलों में डालना। वो कहते तुम हमें खुदा बनाओ, हम तुम्हारे किस्मतों के फैसले करें, हम तुम्हारे मुकद्दर के फैसले करें। और ये चीज़ें फिरौन ने की, अल्लाह ने उसका इंजाम करके हमारे सामने रख दिया खोल के, कि देखो कैसे ये अपने काम करता है और इसने क्या सोचा और अल्लाह ने क्या किया। और पूरा एंड 60 तक फिरौन के और उसके सारे लश्करों के डूबने की बात है, और वो बनी इसराइल जो उस वक्त तक अच्छे मुसलमान थे उनके बचने की बात है। इसीलिए फिर आगे आए 61 से 68 में अल्लाह ताला पर तवक्कुल की आला मिसाल बयान हो रही है। और फलम्मा तराल जमान, जब देखा दोनों जमातों ने, मूसा के साथी कहने लगे भाई हम तो पकड़े गए। यानी आप नोट कीजिए ना कि आगे समंदर पीछे फिरौन, अब क्या करें? उनको तो नहीं पता था ना कि समंदर में रास्ता बन जाएगा, ये तो आज हमें पता है इसलिए हम मुतमईन है। तो यहाँ से पता चलता है अल्लाह पे तवक्कुल इतनी बड़ी चीज़ है कि समंदरों और दरियाओं में भी रास्ते बना दे। वो रब जो टहनियों पे सोए हुए परिंदों को गिरने नहीं देता, वो आपको भी नहीं गिरने देगा। तो हमेशा अपने रब पे तवक्कुल कीजिए। इसके बाद अगला किस्सा है हज़रत इब्राहिम और उनकी कौम का। और आयत 69 से 77 में बुत परस्तों से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुछ सवाल आते हैं। आज आप इसको कह सकते हैं थॉट प्रोवोकिंग, सोच को उभारने वाले, और लोगों को सवाल के ज़रिए से बेदार करने का बड़ा प्यारा अंदाज़ है। वतलु अलैहिम नबा इब्राहिम, और इन पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खबर पढ़िए, जब उन्होंने कहा अपनी बाप और अपनी कौम से मा ताबुदून, ये किन की तुम इबादत करते हो। कालू नाबुदु असनामन, कहने लगे हम बुतों को पूछते हैं और हम तो बस इन्हीं पे बैठे रहेंगे। अब इब्राहिम को जब दलील मिल गई तो कहा हल यस्मा उन्नकुम, क्या ये तुम्हारी बात सुनते हैं। इस तदू ना, जब तुम इनको बुलाते हो। और यनफउनकुम, क्या ये तुम्हें कोई नफ़ा देते हैं। और यदुर्रूना, और क्या ये तुमसे कोई ज़रर दूर करते हैं। कालू बल वजद ना आबाना, नोट कीजिए हज़रत इब्राहिम के सवाल कितने हकीकी थे। तो कोई तो जवाब देते हैं कि सुनते हैं कि नहीं सुनते, मौजू पलट रहे हैं। नहीं, अच्छा भी फिर आप इनको क्यों पुकारते हैं। क्योंकि हमारे बड़े ये करते थे। इसको कहते हैं तकलीद, अंधी पैरवी, अक़ल नहीं इस्तेमाल की, सोच नहीं इस्तेमाल की, और क्या कह दिया कि भाई हम तो इसलिए करते हैं कि हमारे माँ बाप करते हैं। ब्लाइंड फेथ। क्या आज हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें सुनी सुनाई नहीं, कभी सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं कि अम्मा आप ये क्या कर रही हैं। बस अम्मा करती थी तो आज हम भी करने लग गए, इसलिए कि अल्लाह की कदर नहीं है। अगली आयात में आयत 78 से 82 में जिक्र है मार्फत रब्बानी का, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी। यानी जिक्र मार्फत रब्बानी हज़रत इब्राहिम की ज़ुबानी। कितने खूबसूरत अंदाज से अब उनको भी सिखा रहे हैं कि अल्लाह कौन है। अल्लज़ी खलकनी फ़हुव यहदीन, वो जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे राह दिखाएगा। वल्लज़ी हुवा युतिमुनी, वही मुझको खिलाता है। व यस्कीन, वो पिलाता है। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफीन, हाँ जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। नोट कीजिएगा, अच्छी चीज़ों की निस्बत अल्लाह की तरफ कर रहे हैं, खिलाने की, पिलाने की, शिफा देने की, आगे मारने और जीने की भी। लेकिन जहाँ बीमारी की बात है तो ये नहीं कहा कि वो मुझे बीमार करता है, बल्कि क्या कहते हैं, मरिदतु, मैं बीमार होता हूँ। हज़रत इब्राहिम का अदब मा अल्लाह। उलमाए किराम इस पैराए पे इतनी लंबी तफसीर करते हैं के बाद अब बानसीब। हमेशा बड़े छोटे से बात करते वक्त अपने अल्फाज को देखिए, पड़ा हुआ है नहीं रखा हुआ है, कितना को फ़र्क है, लफ्ज़ों का फ़र्क। अम्मी मैं जा रही हूँ। नहीं अम्मी मैं चली जाऊँ। देखिए हमारे बड़े ये अदब सिखाते थे, आज तो बात ही बदल रही है। हम मज़हब को तो पीछे कर ही रहे हैं, हम रिवायात को भी छोड़ रहे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का जो तारुफ कराया, और वाइज़ा मरद तो फ़हुआ यशफीन, से एक बात पता चल गई, शिफा अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह के सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं। एक रिवायत भी है सिलसिला तो सहीहा की 2808, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इसकी रावी हैं। अल्लाह के नबी दम करते हुए फरमाते थे, इम सहिल बासा रब्बन नासी बियदिका शिफाओ ला यकशिफुल कर्बा इल्ला अंता। ए लोगों के रब, तकलीफ़ दूर कर दे, तेरे हाथ में शिफा है, तेरे सिवा कोई तकलीफ़ दूर कर नहीं सकता। अल्लाह ना करे कोई बीमार हो घरों में, लेकिन फिर भी होते हैं, आप अल्लाह से दुआ करें। देखिए डॉक्टर की दवा भी तभी असर करेगी जब अल्लाह चाहेगा, इसलिए अपना ताल्लुक़ अल्लाह से बढ़ाएं। तहज्जुदों में पुकारिए, अकेले में पुकारिए, चलते फिरते पुकारिए, और अल्लाह ताला आपके हमारे घरों के सारे मरीज़ों को ठीक कर दे। जिस्मानी बीमारियाँ, कल्बी बीमारियाँ, रूहानी बीमारियाँ, नफ्सियाती बीमारियाँ अल्लाह ताला सबकी दूर कर दे। आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ईमान अफरोज़ दुआओं का तذکرہ है, आयत 83 से 89 में, और एक एक दुआ मांगने वाली है। पर मैं अक्सर कहती हूँ कि औलादों के गमों से बेनियाज करने वाली ये दुआएं। आप कुरान पाक की तरतीब से भी दुआएं अगर याद करनी और मांगनी शुरू कर दें, एक बुक है फ़ाइनी करीब के नाम पे, नूरुल कुरान पब्लिकेशन से आप देखेंगे तो उसमें तरतीब है, सूरह फातिहा से लेके पहले पारे की जिस जिस तरतीब से दुआएं आई हैं वो पढ़ें। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हर पारे के साथ आप एक पारे की दुआएं पढ़ लें, याद कर लें, समझ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता याद होंगी। तो ये भी दुआ उसी में से है, रब्बी हबली हुक्मन, ऐ रब मुझे हुक्म दे, हिकमत दे, चीज़ों को चलना चलाना आए। अब देखिए हम सबको ज़िंदगी में हर लम्हे जिस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है वो हिकमत है। एक घरेलू खातून की मिसाल दूँ कि खाना बना रहे हैं ना, एक माँ और एक बेटी के खाना बनाने में क्या फ़र्क है? वही सब चीज़ें रखी हुई हैं, वो बनाएगी तो और टेस्ट है, माँ बनाएगी तो और टेस्ट है, हिकमत का फ़र्क है। नमक कितना डालना, प्याज कितने डालने, टमाटर कितने डालने, भूनना कितना, गलाना कितना। जिस तरीके से खाना पकाते वक्त सही रेशियो पर पोषण रखें तो खाना बहुत मज़े का है। एक ही आटे की 10 ख़वातीन रोटियां बनाएं तो 10 रोटियों में फ़र्क है। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी में आपको मुझे अपने मामलात को कैसे डील करना है, इसके लिए हिकमत ज़रूरत है। शौहर से बात कब करूँ, कैसे करूँ, इनको कौन सी बात समझ आती है, इनका मिजाज कैसा है, 2-4 साल के बाद बंदा समझ जाता है। इस तरह मर्द को भी पता है मेरी बीवी किस बात पे गुस्से में आती है। माँ बाप को भी बच्चों के साथ और बच्चों को भी माँ बाप से डील करने में हिकमत की ज़रूरत है। और अफसोस है कि आज हमारे यहाँ ये सबसे कम है, और बहुत कुछ है लेकिन हिकमत कम है। फिर आप देखिए दूसरी दुआ के, वल हिकनी बिस सालेहीन, नेकों का साथ देना। ये नेकों का साथ आपको भी नेक बनाता है, यानी इसमें प्रैक्टिकली कोशिश करें कि आपके साथ उठने बैठने वाले, आपके घर में आने जाने वाले लोग नेक हों। फिर वजली लिसान सदकिन फिल आखिरीन, मेरा जिक्र खैर बाद वालों में अच्छा करना। हम में से कौन चाहता है कि हम कहीं से उठ के जाएँ तो लोग के शुक्र है जान छूटी, खस कम जहाँ पाक चली गई। अच्छा हुआ अल्लाह के नबी के दौर में एक औरत का जनाजा गुजरा तो कुछ लोगों ने उनकी तारीफ़ की, उसके बाद एक और का भी किसी मौके पे गुजरा तो लोगों ने उसकी बुराई की, दोनों के ऊपर आपने कहा वजबत वजबत। क्या जिसकी लोगों ने तारीफ़ की उस पर जन्नत वाजिब हो गई और दूसरी पे जहन्नुम? क्यों? कि लोगों की बात आपके आखरत के इंजाम पे असरअंदाज होती है। एक औरत है, नफिल बहुत पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, लेकिन ज़ुबान की तेज़ है। दूसरी है वो नफिल तो नहीं पढ़ती, फ़राइज़ तो उसके पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ लोगों के साथ उसका अख्लाक बहुत अच्छा है। फरमाए दूसरी का दर्जा जन्नत में ज़्यादा होगा। तो हमेशा ज़िंदगी से ऐसा गुजरिए कि आपके बाद लोग आपकी तारीफ़ करें। वजअलनी मिन वरासती जन्नत नईम, और मुझको बना दे जन्नत नईम के वारिसों में। वग़फिर लि अबी इन्नहु काना मिनद्दालीन, वला तुख्ज़िनी यौम युबअसून, यौम ला यन्फ़ऊ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। ये है जी कल्बे सलीम। हज़रत इब्राहिम की सारी दुआ का एंड अप क्या है कि अल्लाह जो तेरे पास कल्बे सलीम लेकर आ गया वही बचेगा। अब सवाल यह है कि कल्बे सलीम क्या होता है? एक तो हमारे यहाँ लफ्ज़ भी है ना सलीम, नाम भी होता है असलम, सलीम, इस्लाम। हाँ, अरबी ज़ुबान में अगर आप सलीम लफ्ज़ को थोड़ा सा खोल के देखें ना, तो सांप के डसे हुए शख्स को सलीम कहते हैं। अब ज़रा से इसकी रूह को समझिए, अभी अब घबराइए नहीं। अल्लाह ना करे किसी को सांप डस जाएगा ना, तो वो तड़पेगा। तो कल्बे सलीम, तड़पने वाला दिल, दर्दमंद दिल, हर वक्त उसको गम लगा हुआ है। लोगों को ऐसा क्यों है, हाय ये बीमार क्यों है, हाय ये परेशान क्यों है, हाय इसके पास कपड़े क्यों नहीं, हाय इसके पास सलम क्यों नहीं। तो कल्बे सलीम की 5 सिफात ज़रा नोट कीजिए। पहला कौन है? असलम, जो मती हो गया, जिसने वाकई अपना आप अल्लाह के आगे डाल दिया, जिसको इब्राहिम के जरिए में हम पढ़ चुके हैं, इस काल लहू रब्बुहु अस्लिम काल अस्लम तो ली रब्बिल आलमीन। दूसरा होता है सल्लमा, उसने तस्लीम कर लिया, अपनी गलती मान लीजिए, अपनी कमजोरियों को मान लीजिए। फिर तीसरा इसका होता है मानी इस तस्लमा, इस तस्लमा जो मती हो चुका है, यानी इसमें ज़रा और भी इम्फेसाइज है। फिर चौथा इसका मानी होता है सलीमा, इसने कबूल कर लिया। और पांचवा है सालमा, वो सलामती वाला हो गया। पांचों को इकट्ठा करके सादा सा बता दूं, कल्बे सलीम वो है जो अल्लाह के हर हुक्म पे खुश, जिसका दिल दुनिया की मोहब्बतों से चूर चूर नहीं है बल्कि सलामत है, गुजरा हूँ बाजार से मगर खरीदार नहीं हूँ, जिसके रिश्ते सलामत, जिसकी ज़ुबान से दूसरे सलामत। यानी कल्बे सलीम है वो दिल जिसमें अल्लाह की याद और अल्लाह की मोहब्बत आती है। इसकी हदीस से भी तफसीर सुन लीजिए, इब्ने माजा की रिवायत है 4216, अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत है, अल्लाह के नबी से सवाल किया गया कि कौन सा आदमी अफजल है। आपने फरमाया हर साफ दिल सच्ची जुबान वाला। साहबा ने अर्ज किया कि सच्ची जुबान वाला तो हम जानते हैं, ये साफ दिल कौन होता है? तो आपने फरमाया परहेजगार, यानी मुत्तकी, तकीयुन व नकीयुन। हाँ, फिर पाकबाज, जिसके दिल में ना कोई गुनाह हो, ना ज्याती, ना कीना, ना हसद हो। अब ज़रा सा गौर कीजिए, हमारा दिल कैसे, क्या मेरा दिल कल्बे सलीम है? अगर नहीं है तो गम ना करें। कुरान हील्स द ब्रोकन हार्ट्स एंड सॉफ्टन द हार्डन हार्ट्स। कुरान टूटे हुए दिलों को जोड़ता है और सख्त दिलों को नरम करता है। कुरान से जुड़ते जाइए, इंशाल्लाह आपका दिल कल्बे सलीम बनेगा।